विष्णुपादाय। बोलो। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय। नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कान नोएडा में प्रातः श्रीमद के भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद भागवत महापुराण के सातवें स्कंद का छठा अध्याय प्रहलाद जी की शिक्षाएं अपने सहपाठी दैत्यों को उसके आठवें श्लोक का आज हम पाठ करेंगे श्रवण वर्णन करेंगे। सातवां स्कंद शुरू होता है परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से कि भगवान पक्षपात करते हैं देवताओं की सहायता करते हैं और असुरों को मरवा देते हैं। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि भगवान पक्षपात करते हैं और पूरा स्कंद हस्तनापुर के इंद्रप्रस्थ में हियर इसी स्थान के ऊपर नारद और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। पूरा स्कंद 15 अध्याय का सातवां स्कंद युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है और नारद दोनों महाजन है दोनों महाजनों का संवाद है उनके बीच में बातचीत है। सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते हैं सबके साथ समान है आप कैसे कहते हो कि भगवान असुरों को मरवा देते हैं? असुर पुत्र प्रहलाद के लिए तो भगवान नरसिंह का अवतार ले लिया, ये असुरों का सहायता किया कि नहीं किया? पूरे सातवें स्कंद में ये सिद्धांत स्थापित किया गया कि भगवान पक्षपात नहीं करते। प्रहलाद तो हिरण्यकश्यपु बड़े दैत्य का पुत्र था, दैत्य कहते हैं दिति के पुत्रों को, उसके लिए भगवान ने अवतार ले लिया, तो कैसे भगवान पक्षपात करते? तो सातवें स्कंद में मुख्य रूप से कहते हैं कि जो भागवत का विषय है ऊती, ऊती अथ कर्म वासना। ऊती का अर्थ होता है, वैसे ऊती शब्द का अर्थ है कपड़ा बुनना, जो उनना होता है ना, कपड़े को बुनते हैं या स्वीटर बनाते हैं, उनना भुनना, उसको ऊती बोलते हैं। तो हमारे शरीर कैसे बनते हैं? 84 लाख बोले कर्म की वासनाओं से। जैसी जैसी हमारे कर्मों की वासनाएं होती हैं, ऐसा हमारा शरीर होता है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की वासनाएं, असुरी वासनाएं, देवी वासनाएं, मानवी वासनाएं। तो 5 अध्यायों में असुरी वासनाएं से हिरण्यकश्यपु का चरित्र है। दूसरों को उपदेश देता है, स्वयं अमर बनना चाहता है। 5 अध्यायों में देवी वासनाओं से प्रहलाद महाराज का चरित्र है, और अंतिम 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम व्यवस्था मानव समाज में कैसे होनी चाहिए, ये 5 अध्याय 11 से लेकर 15 तक चतुर्वर्ण का और गृहस्थ आश्रम का आदि का वर्णन है। और एक और सिद्धांत तो प्रहलाद महाराज के चरित्र से सीखने का है, जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मेरे इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धालुओं को नहीं बताना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकश्यपु पूछता है कि आप कहां से सीख के आए विष्णु भक्ति, नहीं बताता है। कहता है संसार के भोग में लगे हुए कैसे जान सकते हैं? जब गुरु पुत्र पूछते हैं संड और अमर के कहां से सीख के आए, नहीं बताता है। बोला चबे को चबने, चबे चबाने वाले कहां से समझ सकते हैं कि रस कहां से आएगा? लेकिन जब अभी दैत्य पुत्र पूछेंगे इसके क्लास फेलो श्रद्धा में, तब बताएगा मेरे गुरुदेव नारायण का शिष्य नारद है, और उसने मेरी माता को जब भक्ति का उपदेश किया तो मैं माता के गर्भ में सीख गया। तो दो असुरों को नहीं बताया, जो अश्रद्धालुओं को नहीं बताया, और श्रद्धालु बच्चों को बता दिया, अश्रद्धालु राजा को नहीं बताया, और श्रद्धालु गुरु पुत्रों को नहीं बताया, लेकिन श्रद्धालु अपने बच्चों को बता दिया, किस स्कूल वालों को। तो आज प्रहलाद महाराज की शिक्षा ये, दो बार प्रहलाद महाराज अपने पिता को उपदेश देकर आ गए हैं। पहली बार गए थे कि वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए विष्णु का, तब तो हिरण्यकश्यपु हंस पड़ा, बोला लगता है कि कोई विष्णु का दूत हमारे स्कूल के चारों ओर घूमता है, गुप्तचर ने कुछ बच्चों को फोड़ दिया है। लेकिन दोबारा जब नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया, तब तो बड़ा क्रोधित हुआ, मारने का प्रयास हुआ, मरा नहीं। सब प्रकार से प्रयास करने के बाद नहीं मरा, तो संड और अमरक ने हिरण्यकश्यपु परेशान देके बोला, महाराज परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे अभी छोटा बालक है, हमारा पिता शुक्राचार्य आएगा, इसको समझा देगा, आप चिंता मत करो, हमको दीजिए। तो प्रहलाद को ले गए, इस बार प्रहलाद को ले गए तो शंड और अमरक गुरुदेव गए भोजन खाने के लिए, और पीछे इन्होंने कर दिया प्रचार शुरू बच्चों को। तो इस प्रचार का पहला श्लोक प्रभुपाद जी बहुत उच्चारण करते थे, कौरव कौमारम आचरित धर्म प्रज्ञा धर्मान भागवतान, कौमार आचरित प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं, कल मैंने कथा में ये हमारी कथा में बात किया, प्रज्ञा किसको कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धि का पुरानी बातें याद रहते हैं उसको स्मृति कहते हैं, वो बुद्धि जिसमें भूतपूर्व पुरानी बातें याद रहे उसको स्मृति कहते हैं, वो बुद्धि जो तत्काल किसी बात को समझ ले उसको बुद्धि कहते हैं, जो भविष्य की किसी बात को पकड़ ले उसको मति कहते हैं, और तीनों कालों से परे जो परम तत्व को समझने वाली बुद्धि है उसको प्रज्ञा कहते हैं। कौमारम आचरेत प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा जो बुद्धिमान है, जो संसार के संकट से मुक्त होना चाहते हैं उनको बचपन से ही धर्मान भागवताम ईय का मतलब जीते जी इस दुनिया में भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। और भागवत धर्म कौन देता है? भगवान देता है। और भागवत धर्म का उपदेश है 11वें स्कंद के दूसरी अध्याय से लेके 5वें अध्याय में। निमि महाराज को जो नव योगेंद्र ने उपदेश दिया है वो उपदेश नारद जी वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता को द्वारका में दे रहे हैं, उसको कहते हैं भागवत धर्म। उसमें लिखे भागवत धर्म भगवान देते हैं। मानव जन्म क्षण भंगर है लेकिन अर्थ धर्म है, बड़ा काम का है तो थोड़े दिनों के लिए लेकिन है काम का। और 7वें श्लोक में आप पढ़ के आए क्षत्रिय का बच्चा और 10 साल का वैश्य का बच्चा गुरु के स्कूल में जाया करता था सीधा, ऐसे वैदिक पद्धति ऐसे थी। प्रायः सामान्य रूप से 5 साल के बाद तो बच्चा गुरु के आश्रम में जाता था और वहीं शिक्षा ग्रहण करता था। तो गुरुकुल में 18-18 विषय पढ़ाए जाते थे। भारत में जो गुरुकुल थी अंग्रेज के आने से पहले 1800 तक ये भारत पूरे के अंदर कोई 7000 से ज्यादा गुरुकुल थी और फ्री में एजुकेशन होती थी। और अंग्रेज के आंकड़ों के अनुसार भारत दक्षिण भारत में 100% पढ़े लिखे लोग थे, साक्षर थे, और उत्तर भारत में 97% साक्षर थे। और कोई भिखारी नहीं था भारत में, कोई बेरोजगार नहीं था। जो पढ़ाने की पद्धति थी गुरुकुल की वो इतनी सक्षम थी, इतनी उत्तम थी कि कोई बेकार नहीं था। तो अंग्रेज ने उस पद्धति को उखाड़ के मेका लेने, दान देने वाले राजा महाराजों का दान बंद करा दिया, फ्री में पढ़ाने वाले गुरुजनों को ताड़ित करके भगा दिया पीड़ा देकर, और फिर अंग्रेजी पद्धति शुरू की, जिस पढ़ाई से कोई किसी काम का नहीं रहता, न समाज के काम का, न बाप के काम का, न मां के काम का, न धर्म के काम का, केवल इंद्रिय तृप्ति के भोग में भागता है और कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक है। आइए 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। दुरापुरेण कामेन मोहेन च बल्यसा शेषं गृहेषु सक्तस्य परमतस्याप्याति दुरापुरेण कामेन मोहेन च बल्यसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमथस्य प्याति। पढ़िए। दुष्गुणानेन कामेन मोहेन च बल्यसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमथस्यापयायति। दोपेन कामेन मोहेन च बल्यसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमथस्याप्यायते। दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमतस्याप्यायी। माताजी दुरापुरेण कामेन मोहेन च बल्यसा शेषं गृहेषु सक्तस्य दुरापुरेण। दुरापुरेण का अर्थ क्या होगा? जिसका पूरा होना बहुत दूर है। दुरापुरेण, जो कभी पूरा ना हो सके, इसका अर्थ यही है। दुरापुरेण दुर्लभ है, जिसका पूरा होना कभी नहीं पूरा हो सकता है। क्या? कामेन, कामनाएं, इच्छाएं, कामनाएं और काम की वासना कभी भी पूरी नहीं होती, इसका अर्थ ये। इसी लाइन के ऊपर प्रभुपाद जी प्रवचन देते हुए कहते हैं, अकबर ने बीरबल से पूछा था कि आदमी की काम वासना कब पूरी होती है, तो बीरबल ने कहा बाद में बताऊंगा। एक दिन अकबर को कहा, आपकी लड़की छोटी को लेके मेरे साथ चलो अस्पताल में। अस्पताल में आदमी मरने वाला था। अकबर को कहा, देखो अभी मरने वाला क्या करता है। तो अकबर देखता है कि मरने वाला अकबर शहनशाह को नहीं देख रहा है, बीरबल मंत्री को नहीं देख रहा है, उस लड़की को देख रहा है। अकबर ने कहा, आप सच कहते हो, मरते दम तक ये काम खत्म नहीं होता। प्रभुपाद ने प्रवचन में इस शब्द के ऊपर ये कहानी बताई है। और भागवत में भी और वेद में भी ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति को सारे संसार का धन संपत्ति, सारे संसार का चल संपत्ति, पशु या आजकल की भाषा में सब मॉडल की गाड़ियां और सब भोग की सामग्री, सुंदर स्त्रियां दी जाए तभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ये वेद का वाक्य भी है और भागवत में भी है। दुष्पूरण कामेन, काम की कभी पूर्ति नहीं होती, काम कभी शांत नहीं होता, पूरा होता ही नहीं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, ये प्रहलाद महाराज कह रहे। क्यों नहीं होती? मोहे न, मोह में डाल देती हैं कि अरे ये अभी पूरी हो गई, बस अभी थोड़ा टाइम बचा है, बाद में कर लेंगे, बस हो गया। मोह को किसको कहते हैं? मोह कहते हैं जो नहीं है उसको मान लेना। मोहन को प्रभुपाद जी ने तीन उदाहरण दिए प्रवचन में। रात को सोते हैं, जब सपना देखते हैं, ये मोह है। कोई मेरा गर्दन काट रहा है, लेकिन न कोई गर्दन कट रहा, न कोई काटने वाला है, लेकिन सपने में हम देखते हैं हम मर गए, ये मोह एक, स्वप्न का मोह। दूसरा जागृति का मोह, जीते जी हम दुनिया में देखते हैं इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, तब तक हम तो नहीं रहेंगे। स्वप्न सशुपति, ये तीनों मोह है। मोह शब्द की माना है जो असत को पकड़ ले, सत को भूल जाए, ये हुआ मोह। बोला नहीं मोह करेगा, क्यों मोह करेगा, समझदार है। बोला बलिये से, बलिये से का मतलब बलपूर्वक, बलिये से मतलब ये मोह का प्रभाव इतना बलवान है कि उससे छूटना मुश्किल है, बलिये से। अब भगवत गीता का तीसरा अध्याय देखो, अर्जुन क्या पूछ रहा है। अथकेन प्रयुक्तो यम पापम चरिते पुरुष अनिच्छन अपि वार्षणेन बलादेव नियोजित। कौन पाप कराता है? लगता है बलपूर्वक कोई पकड़ के जबरदस्ती पाप कराया। नियोजिति का अर्थ होता है नाक में रस्सी डाल के, जैसे कोई बैल है कभी खेत में जुतना नहीं चाहता है, गाड़ी में मैं अबला हूं, कहां जाऊं? ठीक है, वो दूसरी कुटिया में बंद करके दरवाजा रात बिता लो, सुबह निकल जाना, और कोई भी दरवाजा खोलने का कहा जयमनी कहे कि खोलो तब भी मत खोलना। ये तो बता दिया उसको। अभी जयमनी जी को ध्यान लगे नहीं, वो लड़की का आवाज कान में आए, उसकी शक्ल देखे, थोड़ी देर के बाद उस कुटिया के बाहर गया, बोला दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, गुरुजी ने कहा है, जयमनी ने कहा नहीं। बोला मैं जयमनी हूं। बोला जयमनी आए तो भी नहीं खोलना। जयमनी जी घास की झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए, घास को तोड़ा, ऊपर कूदा, कूद के अंदर गया। अंदर गया, जब उसको देखने लगा तब देखे व्यासदेव दाढ़ी वाला बैठा है। प्रणाम किया, बोला गुरुजी आपने सूत्र सच लिखा है, मैंने मूर्खता की, इसके ऊपर संदेह किया। गुरुजी ने उसका परीक्षा लिया। और कोई रास्ता नहीं, क्यों? मोह, जैसे ही वो वेग आएगा साथ में मोह साथ में आएगा, और मोह कितना बलवान है। ये इच्छाएं कहां, इच्छाएं सब रहती कहां है, इच्छाएं रहने की जगह कहां है? भगवत गीता में क्या बोला, इच्छाएं कहां रहती है? मन बुद्धि इंद्रिय अस्य अधिष्ठानम उच्यते। मन बुद्धि और इंद्रियों में रहती हैं, और इन सबसे सबसे ज्यादा इच्छाओं का है जो पेटारा है, कई जन्मों का जो पेटी है, वो मन है। और मन भगवान ने सब इंद्रियों में अपनी विभूति बताया, बुद्धि को नहीं बताया। दसवें अध्याय भगवत गीता में भगवान ने अपनी विभूति क्या बताया, इंद्रियाणाम मनश्चास्मी, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जो भगवान की विभूति है वो भगवान में लगेगी तो ही बचेगी, संसार में लगेगी तो नहीं बचेगी। मन भगवान की विभूति है, तो जिसकी विभूति है उसकी सेवा में लगेगी तो सुरक्षा है, और भगवान की सेवा में नहीं लगी तो हमेशा परेशान करेगी। इसलिए मन को वश में करना योगियों का आर्टिफिशियल अप्रोच है। मन में वश को वश में कर दो। अर्जुन ने क्या कह दिया, असंक्षम महाबा, हाँ क्या परमाथि बल, पहला चंचलम ही मन कृष्ण, मन चंचल है। अरे चंचल तो बच्चे भी होते हैं, संभाल लेते हो ना। प्रमाथी, प्रमाथी कहते हैं मंथन शब्द, समझते हैं मंथन, जैसे मिक्सी घूमती है तो उसमें कौन सी चीज कहां है पता लगता है। प्रमाथी का मतलब एक जगह है ही नहीं, पकड़े कहां बच्चे को, यहां देखते हैं तो वहां होता है, वहां देखते हैं वहां चला जाता है, पकड़े कहां से। प्रमाथी का मतलब एक जगह रुकता नहीं है। बोला भाई बटन बंद कर दो, कमरे में बंद कर दो, बलवद शक्तिशाली है, रोका नहीं जाता। बस अपनी शक्ति बढ़ाओ तो बस दृढ़ है, बहुत हठी है, अब हठ करेगा तो क्या करोगे। तो ये चार विशेषण देके मन को न वश में करने का अर्जुन ने कहां कहा है, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक देखो, वहां शब्द परमथ की परिभाषा है। ये दूसरा स्कंद पहला अध्याय चौथा श्लोक, देहापत्य कल्त्राधीश्व आत्म सेनेश्व असत्वापि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अब क्या लिखा है, जिसको आत्म तत्व का पता नहीं है, जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, केवल ज्यादा से ज्यादा अति आसक्त है, ऐसे सैनिकों में जो कभी रक्षा नहीं कर सकते हैं। कौन सैनिक है? अपना शरीर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, भले उसको कितना ही जीवन का अनुभव हो जाए, फिर भी वो उसको ये सत्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो परमत है। ये सुखदेव महाराज का श्लोक है। ये आज तक किसी ने किसी को बचाया? उदाहरण का देना हो तो बोलो, गजेंद्र हाथी को उसकी पत्नियां उसके बच्चे मगरमच्छ के बचा तो नहीं सके ना, किसने बचाया गजेंद्र को? तो ऐसे मगरमच्छ का है काल है, मगरमच्छ जो सबको पकड़ के बैठा है, कौन बचाएगा? कोई घर वाला बचा सकता है क्या? फिर तो परमथस्य हो गया ना, पागलपन है। प्रभुपाद ने उसमें एक बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि इसमें जो को देखना है जो आसक्त नहीं है, तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर देखो, स्वयं उसकी पत्नी बच्चे सारे ही भगवान की भक्ति साथ में करते हैं। जादिन ग्रह सत्संग, जादिन ग्रह कीर्तन देखे वैकुंठ, जे दिन ग्रह भजन देखे गोलोक भाई। ये गृहस्थी अगर ऐसा है जिसके घर में कीर्तन होता है, घर गोलोक बना देता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे गृहस्थ भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जो कहते हैं घर में कीर्तन हो तो गोलोक है। और कहते हैं उनके परिवार में हमारे गुरुदेव तो विश्व कल्याण का कार्य करके कृष्ण भावना का प्रचार किया। तो गृहस्थी के लिए चार चीजें भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने लिखी है, जिससे वो आसक्त होने से बच जाएगा। ये भगवद गीता के 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के लक्षणों में वहां भी पुत्र स्त्री गृह आदिशु आसक्त से लिखा है। चार चीजें लिखी है, पहले घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए, घर का मालिक भगवान को बना दे, तुम सेवक बन जाओ। दूसरा, जो रसोई में शुद्ध बने वो पहले भगवान को भोग लगे, फिर परिवार प्रसाद खाए। और तीसरा, घर में भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और चौथा, घर में भागवत का, चैतन्य चरितमृत का, गीता रामायण का पाठ होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिस घर में ये चार चीजें हैं वो ग्रस्त आसक्त नहीं है, वो ग्रस्त सदग्रस्त ही है। तब एक सूत्र याद करने लेना चाहिए जीवन में, आसक्ति के बाद क्या आता है भक्ति में? भाव और प्रेम। तो आसक्ति प्रेम का रास्ता है, प्रेम होना चाहिए भगवान से, क्योंकि भगवान का ही प्रेम है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, जो हमारे हृदय में प्रेम है वो कृष्ण के लिए, इसलिए जो आसक्ति से प्रेम हो वो तो हो भगवान के लिए और किसी के लिए नहीं, और व्यवहार हो परिवार के लिए। प्रेम कृष्ण के साथ, व्यवहार परिवार और संसार के साथ। व्यवहार कुशल होना चाहिए, बेटे से बेटे का व्यवहार करो, भाई से भाई का व्यवहार करो, मित्र से मित्र का व्यवहार करो, ग्राहक से ग्राहक का व्यवहार करो, पत्नी से पत्नी का व्यवहार करो, अपने धर्म को पालो, लेकिन प्रेम भगवान से करो। हम क्या करते हैं? प्रेम तो करते हैं परिवार से और व्यवहार करते हैं भगवान से। संडे को मंदिर में आ जाएंगे, जन्माष्टमी के दिन आ जाएंगे भगवान को मुंह दिखाने के लिए, तो व्यवहार भगवान से करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। हमारा काम है उल्टा, प्रेम होना चाहिए भगवान से और व्यवहार होना चाहिए संसार से। जिससे प्रेम करते हैं उसको जीवन में पहले रखना चाहिए, व्यवहार तो अपनी जगह पे करेंगे लेकिन प्रेम पहले स्थान पे होना चाहिए। वो प्रेम हमारे हृदय में पहले से तैयार पड़ा है, कहीं से लाना नहीं है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं, कोई साधन से नहीं आएगा, तो कोई नहीं प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट होगा। शरवणादि सिद्ध चेते कराए उदय, जब भगवान की कथा सुनेंगे कीर्तन करेंगे तो वो प्रेम जागृत हो जाएगा। इसका अर्थ है जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो कृष्ण की कथा सुनने में लालायत रहते हैं, सब काम छोड़ के पहले कथा सुनने आते हैं। सौ काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, हजार काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और कोटि काम छोड़कर भजन करना चाहिए। और भजन की अर्थ है सेवा, और भागवत के लिए शब्द नित्य भागवत सेवया। भजन का असल में अर्थ है सेवा। यह हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपते हैं? सेवा के लिए जप रहे हैं ना, तो भजन है सेवा के लिए। और नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत का सेवन करना चाहिए। जैसे कहते हैं दवा का सेवन करना, तो ऐसे भागवत का सेवन करना चाहिए। भजन का मुख्य अंग है भागवत, एकदम भक्ति को निष्ठा तक ले जाती है। नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवती निष्ठि नष्ट की। हमारा प्रायः सारा समय अनर्थ निवृत्ति में चला जाता है, अनर्थ से ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन भागवत अगर श्रद्धा से सुने तो निष्ठा तत्काल मिल जाती है। भक्ति एकदम निष्ठा वाली हो जाती है, निष्ठा तक जाने में कोई रुकावट नहीं है। नित्यम भागवत सेवया, तो प्रेम है अगर भगवान में आसक्ति है। मैं आसक्त मना, मन मुझ में आसक्त कैसे होगा? नित्यम भागवत सेवया। परमथस्य परमाद के कारण, परमत्त प्रमाद के कारण, पागलपन के कारण, आलस के कारण बच्ची शेष जीवन भी बेकार चली जाती है। तो इसका मतलब कब भगवान का भजन करना चाहिए? जब शरीर में शक्ति हो। और मूर्ख दुनिया वाले कहते अरे अभी काम कर लो, बाद में बुढ़ापे में भजन करना। बुढ़ापे में कैसे भजन करेगा? अपना पानी पी नहीं सकता है, भजन कहां से करेगा? धोती बांधना आती नहीं है, दूसरा कोई बांधता है, भजन कहां से करेगा? भगवान से एक भक्त ने पूछा कि भगवान दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यह कि जब जवानी में शक्ति होती है तब वो पैसा कमाने के लिए पागल की तरह भागता है, और जब पैसा आ जाता है तब फिर जवान होने के लिए सारा पैसा खर्च करना चाहता है। मूर्ख को न पैसा काम आया न जवानी काम आई, ऐसी सामान बेकार में चला गया। जब जवानी थी तब भागा दौड़ी करके पैसा कमाया, और पैसा आ गया तो फिर कॉस्मेटिक लेके जवान हो गया, और सारा पैसा बेकार गया, जवानी बेकार गई। जवानी के दिन में सुख लिया नहीं, और बुढ़ापे के बाद फैशन से तो जवानी आएगी नहीं, जवानी भी गई पैसा भी गया। ऐसा मूर्ख है दुनिया का, सबसे बड़ा आश्चर्य है ये दुनिया का। और अन्य स्थानों में भी, मेरे प्रहलाद महाराज भी आगे कहते हैं जब तक शरीर में शक्ति है तब तक भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो कुलशेखर महाराज की तरह अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण कर नहीं पाऊंगा, गला रुंध जाएगा, खांसी हो जाएगी, बेहोश हो जाऊंगा। तो अभी कर लेना चाहिए ना। तीन पीढ़ियां लगी सूर्य वंश के राजाओं को धरती के गंगा को लाने के लिए। महाराज अंशुमान पहले राज किया, फिर बेटे दिलीप को राज देके तपस्या करने गए, फिर दिलीप भागीरथ को राज देके तपस्या करने गए, लेकिन गंगा नहीं आई। भागीरथ ने कहा कि पहले भोग करते हैं फिर तपस्या करते हैं, ये ठीक नहीं है, मैं पहले जाके तपस्या करके गंगा को लाऊंगा फिर राज करूंगा। तो भागीरथ ने जब परिवर्तन किया, पहले जवानी में तपस्या करने चले गए, तब गंगा जी का प्रकट्य हुआ, तब गंगा जी को लाए, अपने पूर्वजों का उद्धार किया, और फिर भागीरथ राज किया। उसके बाद किसी को राज देके गए ऐसा वर्णन नहीं है। तो प्रभुपाद जी फिर प्रवचन के एंड में सदा ये कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं बचपन से ही अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य की शिक्षा हो, तो फिर ग्रस्त में भी जाएगा तो आसक्त नहीं होगा ग्रस्त में, आसक्ति उसकी भगवान में बनी रहेगी, ग्रस्त के साथ व्यवहार करेगा, भगवान की इच्छा से किसी अच्छे जीव को इस धरती के ऊपर लाएगा जो भगवान का भक्त बनेगा। तो सदगृहस्थी के बगैर तो संसार में कोई साधु का जन्म नहीं हुआ, कोई अवतार संसार में आया है, कोई साधु महात्मा आया है तो भी किसी ही माता पिता का आश्रय लिया है। सब आश्रमों का जन्मदाता तो ग्रस्त है, ब्रह्मचारी को भी कोई माँ दूध पिलाती है, सन्यासी भी माँ की गोद में खेला है, वानप्रस्थ सब भी ग्रस्त आश्रम सबका जन्मदाता है और सब आश्रमों को पालन भी ग्रस्त करता है, ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, सन्यासी साधु को दक्षिणा देता है, वानप्रस्थ को भोजन देता है, तो कौन देता कौन है, भगवान का ग्रस्थी सब आश्रमों का पालन भी ग्रस्त करता है। वो अगर ठीक तरह से अपने काम को कर ले और फिर समय आने के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं वानप्रस्थ ले ले, दोनों पत्नी पत्नी जाके वृंदावन में बैठे, वन कौन सा, वृंदावन में जाके बैठे भगवान का भजन करें, दो चार महीने में कभी आके देखें बच्चे का कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है उनको कोई मशवरा है तो दे दें, नहीं तो बच्चे इस बहाने वृंदावन आएंगे तो सही, उसका भी आना जाना तो होगा। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया देख लीजिए, जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है और अति आसक्त है अपने घर परिवार में और जिसकी कामनाएं जो कभी पूरी नहीं होती है, जो बहुत बलवान है और हमेशा मोह में डाले रखती है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति का बचा हुआ शेष जीवन 10-1 साल जो बचता है वो भी व्यर्थ चला जाता है और भक्ति नहीं कर पाता। ए इस श्लोक का अर्थ है, देखो श्लोक के अंदर भक्ति शब्द है नहीं, प्रभुपाद ने लिखा है अष्ट में भक्ति नहीं कर पाता, क्यों लिखा, क्योंकि बात पहले श्लोक से चली आ रही है और उसमें लिखा है कि भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, तो हर श्लोक में वो भागवत धर्म लिखना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने जो शब्द श्लोक में नहीं है वो अर्थ क्यों किया है, एक बात है जो करता आ रहा है कोई, उस पूरी बात को नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आदमी पूरी बात नहीं सुने तो अर्थ का अनर्थ होता है। एक आदमी एक रात के सब किसी घर के बाहर से जा रहा था तो उसने दो आवाज सुने, अरे गला काटो इसका, नहीं नहीं बाजू काट दे, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आने लगी, चारों ओर घेर लिया घर को, किसका कत्ल कर रहे हैं, किसका गला काट रहे हैं, किसका बाजू काट रहे हैं, अंदर जाके देखें एक बेचारा बूढ़ा बैठा है, बोला किसको मारा है, कहां है गला काटा हुआ, किसके आज बाजू काटे, बोला यहां तो कुछ भी नहीं है, बोला ये आवाज जो आ रहा था, और उसने बोला संतरी साहब मैं दर्जी हूं, बेटे को सिखा रहा था कि कुर्ते का गला काटो बाजू काटो तो कुर्ते की कटाई सिखा रहा था कि गला काटो बाजू काटो, ये तो कुर्ते की सिलाई कर रहे थे, कोई आदमी थोड़ी मार रहे थे। तो ऐसे जो आधे वाले श्लोक का अर्थ कर देंगे तो पब्लिक को कठी कर लेंगे। आरंभिक दिनों में बस के अंदर जब अमेरिका में संकीर्तन करते थे भक्त, तो प्रायः पेट्रोल पंप पे ऊपर जहां पानी होता था वहां रात को रुकते थे, सुबह नहाते थे, तो सुबह 4 बजे नहा रहे हैं भक्त, तो एक तरफ बस के जो है पुरुष नहा रहे हैं, तो जैसे उनको छोटा सा गमछा पहना हुआ नहा रहे हैं अमेरिका में, एक तरफ स्त्रियां नहा रही हैं ऐसे कपड़ा पहना हुआ साड़ी, तो कोई गाड़ी आई और गाड़ी के हेडलाइट्स पड़ी बस के ऊपर नहाने वालों के ऊपर, एकदम यू टर्न लेके भागा, 5 मिनट के बाद पूरी पुलिस चारों ओर से घेर लिया पूरे पेट्रोल पंप को, दूसरे लोग के कोई यहां जीव आए हैं क्योंकि अमेरिका में ऐसे कोई नहीं नहाता है बोला एलियन आ गए हैं, तो कोई देश दूसरे लोक के लोग ऐसे तो कोई कभी नहाता नहीं है यहाँ। तो आधा समझ वाला कोई, अब वो पूरा सब फिर उनको देखा तो वो तो ये तो अमेरिकन है सारे। बोले ये क्या करो, बोले ये सुबह सवेरे, बोले इतना सवेरे नहाते हो, हम तो महीने में एक बार नहाते हैं। सर्द मुल्क है, क्या क्या रोज कौन नहाएगा बैठ के। तो श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है वो अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक आसक्त होता है, होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन में शेष वर्ष भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। जो आखिरी लाइन है ये श्लोक में नहीं है, लेकिन ये श्लोक प्रभुपाद ने लिखी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज पहले से कहे भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सबके हितेशी है, भगवान ही सबका शुभ चिंतक है और भगवान ही सबका आश्रय है, तो उसी की भक्ति करनी चाहिए। तो ये क्यों लिखा है तो ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य को देख लेते हैं। यही जीवन में 100 वर्षों का लेखा चोखा है, 100 वर्ष ऐसे बीत जाते हैं। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, लोग 100 वर्ष तक बहुत कम जीते हैं आजकल, फिर भी यदि कोई इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष असक्ता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। आजकल कहते हैं 4 साल आदमी के लाइनों में खड़े हुए खराब हो जाते हैं, टिकट लेते हुए बिल पे करने के लिए लाइनों में 4 साल जिंदगी के चले जाते हैं। एक आदमी की सारी जिंदगी को गिनती किया कि लाइन में कितना खड़ा पड़ता है, तो 4 साल तो लाइन में चले जाते हैं। सिद्ध बनने का प्रशिक्षक मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके वन जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए, यही जीवन की पूर्णता है। तो पहले ब्रह्मचार्य का हमने पहले आरंभ में क्लास शुरू किया, यहां ब्रह्मचार्य की शिक्षा गुरुकुल में होती थी, उसको अंग्रेज ने खत्म किया और प्रभुपाद ने जाके अमेरिका में गुरुकुल चालू किया। 66 में इस्कान को रजिस्टर किया, 67 में पहला गुरुकुल खोला दलाई इसमें। तो जो अंग्रेज यहां बंद करके गए वो अंग्रेजों के वहां जाके पहले खोला गुरुकुल। प्रभुपाद का इच्छा था कि ये शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक कभी भी हमारी भविष्य की पीढ़ियां भक्ति के रास्ते में चल नहीं सकती। लेकिन हम दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी ये जितने भी गुरुकुल पद्धति प्रभुपाद ने प्रयास करके शुरू की, हम उसको अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए, निभा नहीं पाए और उसको चला नहीं पाए। क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि गुरु है नहीं तो गुरुकुल कहां से होगा? जब गुरु होगा और गुरु माता होगी तो गुरुकुल होगी। आप दुनिया की कोई भी गुरुकुल देखो प्राचीन काल की, गुरु चाहिए, गुरु माता चाहिए। बच्चे की शिक्षा के लिए कोमल साइड माता की चाहिए और नियम में चलाने वाला, संयम में सिखाने वाला गुरु जी पिता होना चाहिए। दोनों नहीं होंगे तो गुरुकुल नहीं चलेगी, और हमारे पास न गुरु ही नहीं है तो गुरुकुल कहां से आएगी? पकड़ के किसी को जो मंदिर में नहीं चलता है उसको गुरुकुल में बिठा दिया तो उससे थोड़ी गुरुकुल चलेगी। सद्ग्रस्ती कोई वानप्रस्थ तक अपना ग्रस्त जीवन अच्छी तरह से निभा चुका हो, वो गुरु बन के और गुरुकुल में दोनों गुरु और गुरु माता बन के बच्चों को शिक्षा दें जिन्होंने बच्चों को पहले सिखाया है, तब गुरुकुल सफल होगी। ऐसा सद्गिरदी ग्रस्ती मिल जाए तो ही गुरुकुल सफल हो सकती है। और उसको गुरु होना चाहिए बच्चों का। वो गुरु नहीं होगा तो बच्चे उसका आदर क्यों करेंगे और बच्चे उससे सीखेंगे क्यों? इसलिए हमारी गुरुकुल फेल हो गई। ये कारण है गुरुकुल को फेल होने का। बगैर ब्रह्मचार्य की शिक्षा के, प्रभुपाद भगवद गीता में लिखा है कि आधुनिक युग में ब्रह्मचार्य इम्पॉसिबल जैसा हो गया। ब्रह्मचार्य की आयु होती है 5 साल के से लेकर 25 साल तक, वो शिक्षा की आयु होती है। उस वक्त तो किसी को ब्रह्मचार्य की शिक्षा मिलती ही नहीं है। आप देखें प्राचीन काल में, प्राचीन बरित ने अपने बेटे प्रचिताओं को बोला कि जाके पहले तपस्या करके आओ फिर आके गृहस्थ में प्रवेश करना। दक्ष ने अपने पुत्रों को कहा जाए तपस्या करके आओ फिर आके राज करना। तो बचपन में तपस्या, ब्रह्मचार्य बड़े से बड़ी तपस्या है, ब्रह्मचार्य की शिक्षा तो होनी चाहिए ना। अब तो कंसेप्ट नहीं है ब्रह्मचार्य की आज की स्कूलों में, ब्रह्मचार्य की तो ब्रह्मचार्य शब्द की है ही नहीं। यही जीवन की पूर्ण रहा। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अजित इंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसे कि हम पश्चात देशों में देख चुके हैं। प्रभुपाद कहते हैं आज स्कूल में बच्चों को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति सिखाते हैं। और पश्चात देश में प्रभुपाद ने देखा था, तब 1975 की बात होगी ये, और अब तो ये हमारे यहां सारी इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ और है नहीं। आधुनिक शिक्षा केवल पैसा कमाने की है, चरित्र की शिक्षा तो एक पैसा नहीं है। कल हम क्लास में उधर कह रहे थे कि जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में हमको लिखा होता था अंग्रेजी में, जब पढ़ते थे 6 में आते थे तो पहले पढ़ाते अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सवेल सोएगा सवेल उठेगा तो स्वस्थ अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा और बुद्धिमान रहेगा। लेकिन आजकल किसी स्कूल के बच्चे के किताब में ये लिखा है? दिखाया आपने? क्योंकि पढ़ाने वाला ही नहीं सोता है, रात को भूत की तरह घूमता रहता है, तो पढ़ाएगा कहां बच्चों को? पहले हमारे स्कूलों के बाहर लिखा होता था कम टू लर्न, और अंदर लिखा होता गो टू सर्व। आपने ऐसे स्कूल में देखे हैं? पहले लिखा होता था आइए शिक्षा ग्रहण कीजिए, जाइए सेवा कीजिए। अभी किसी स्कूल में ऐसे लिखा हुआ है? लिखा नहीं है, लेकिन अदृश्य है, आइए जेब खाली कीजिए, जाइए लोगों को लूटिए। ये आधुनिक स्कूल के लिख नहीं सकते ऐसे, लेकिन कर ये रहे, आइए जेब खाली कीजिए, जाइए लूटिए। अब 50 लाख रुपया देके कोई डॉक्टर बनेगा, मुफ्त में इलाज क्यों करेगा? हमने डॉक्टरी की 5-6 साल में मेरे ख्याल में सब मिला के हमारे 5,000 रुपया भी खर्च नहीं हुए। तो हमने कभी किसी से पैसा लिया ही नहीं डॉक्टरी का। हम क्या करें, हमें खर्चा ही नहीं है तो करें क्या पैसा लेके लोगों से? हमने फ्री सेवा की, जितना दिन किया फ्री सेवा की। भैया हमारा ही खर्चा नहीं है तो हम काहे के लिए खर्चा लोगों से लें? तो अभी ऐसी आधुनिक शिक्षा की पद्धति इतनी कहा जाए तो क्रूर कहा जाए, क्रूअल है असल में, कि बच्चे कैसे दयालु बनेंगे, बड़े होके कैसे दयालु बनेंगे? हम तो राज का टीचर तो नहीं है, टॉर्चर कर रहे हैं सब कुछ। गुरुजी होते थे तो वो तो पर पालन पोषण करते थे बच्चों का, जब से उसका नाम टीचर हो गया तब से टॉर्चर चालू है। ये भाषा ही ऐसी हो गई। किसी ने स्कूल की परिभाषा बताई कि स्कूल किसको कहते हैं? बोला पप्पा पे पप्पू पिले, बाप पैसा दे और बच्चा खेले, जिंदगी पूरी खराब। हरे कृष्ण। तो अंतिम लाइनें पढ़ लेते हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतर करता है तो ये आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्या में जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वो कुकर सुकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव काम इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का ये जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है, बहुत ही दुखदायी है, ये सदा दुख देने वाला है, रिस्की। 100 साल के बाद क्या वापस बनेंगे कुछ मालूम नहीं। इतने लोग संसार में बढ़ रहे हैं, कोई लोग एक बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर रहा है तो इतने सारे लोग दुनिया में बढ़ क्यों रहे? आधा ये संख्या बढ़ क्यों रही है? बच्चे तो कोई पैदा नहीं कर रहा है। चाइना एक से ज्यादा पैदा करने वाले को दंड देता है, हमारे यहां एक से ज्यादा कोई पैदा कर नहीं रहा है, तो ये संख्या कैसे बढ़ रही है? ऊपर लोग भगवत धाम जा नहीं रहे, यहां भीड़ बढ़ रही है और कुछ भी नहीं। तो इसका इलाज फैमिली प्लानिंग नहीं है, इसका इलाज है मंदिर के अंदर लोगों को भक्त बनाओ, यहां से भेजो भगवान के धाम में तो यहां भीड़ कम हो। आप देखो कितना मच्छर मारने का सरकार ने प्रयास किया, मच्छर खत्म हुआ? हाँ, कितना मच्छर मारने का प्रयास किया, मच्छर खत्म हुआ? क्यों नहीं? सब खून चूस के मरते हैं, मच्छर बनते हैं, कितना खत्म करोगे? आदमी को सुधारो, खून चेसना बंद करें तो मच्छर बंद हो जाएंगे। मलेरिया डिपार्टमेंट पे खर्च मत करो, आदमियों को सुधारो, खून चूसने वाले हम अपनी तरफ से नहीं कहते। जब बॉम्बे का केस लड़ रहा था, तमाल कृष्ण गोस्वामी कोर्ट में जाते थे, बेंच के ऊपर बैठते थे, इतने बड़े खटमल, उनको लाल हो जाता था, वाइट शरीर। प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी उधर बहुत इंतजार करना पड़ता है, बेंच के ऊपर बैठता हूं, खटमल खाते। प्रभुपाद ने कहा सारे वकील मर के खटमल होते हैं और उन्हें ही कोर्ट में ही बैठे होते हैं, इसलिए बेंच पे मत बैठा करो, ये सारे खून चूसने वाले वापस वकील खटमल हो जाते हैं, इसलिए उधर नहीं बैठने का। आप वकील, बहुत बड़ा वकील बने और दूसरे जन्म में खटमल बने तो कोई अच्छा कमाई कर लिया क्या? प्रभुपाद का दूसरा जन्म वैरथ में चला जाता है, उनको मालूम ही नहीं है मूर्खों को, वो पागल है, परमत है, अब क्या किया जा सकता है। तो प्रहलाद महाराज के इस प्रचार से सारे बच्चे कीर्तन करने लगे और कीर्तन इतना जोर जोर से होने लगा कि संड और अमरक रोटी खाया ही नहीं, भाग के आए कि क्या हो गया, और देखा कि एक पहले था ये पूरा स्कूल खराब हो गया। वो भागते हुए गए हिरण्यकश्यप के पास कि हमारे से सुधरेगा नहीं, पूरी स्कूल को खराब कर दिया। और तब प्रहलाद महाराज को पकड़ के ले गए, फिर आगे की कथा कैसे खंभे के अंदर से नरसिंह देव प्रकट हुआ, वो कथा आगे आएगी। तो आज के श्लोक से हमको क्या ले जाना चाहिए कि पहले तो जितनी जवानी के अंदर बचपन में अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सके उतना अच्छा है। अगर उनकी नीम पक्की होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी, तो वो अच्छे इंसान बनेंगे। अगर बचपन में शिक्षा नहीं दी बच्चों को तो बहुत बड़ी गलती हमने कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। और दूसरा, जो पक्की उम्र के हो गए हैं उनको पशुओं की तरह केवल भोग वासनाओं में नहीं जीना चाहिए, अपने जीवन को आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर आधारित करना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर आधारित करना चाहिए। 8 घंटे आपको कमाने के लिए दिए, कमाओ, शरीर का पालन पोषण करो, परिवार का पालन पोषण करो, 8 घंटे आप सो, खाओ, पियो, लेकिन बाकी जो आपके अपने कुछ समय आध्यात्मिक चिंतन के लिए, हरि कथा हरि कीर्तन के लिए निकालो। तभी प्रहलाद महाराज एक महाजन है, उनकी शिक्षा के अनुसार मानव जन्म सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मेरे ख्याल में समय ज्यादा हो गया, प्रश्न उत्तर कल।